ओम शांति। मुझे लगता है कि सभी सामने आ जाए तो अति उत्तम रहेगा। सभी सामने सामने की सीट में ईश्वरी बहन ध्यान देंगे, जो भी आएंगे उनको सामने ही बैठाइएगा, पीछे नहीं। ओम शांति। आज के सत्र की शुरुआत हम भी ध्यान से करते हैं, तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। चाहे तो आप आंखें बंद करके भी ध्यान कर सकते हैं, या अध खुले नेत्रों के माध्यम से एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित कर लीजिए, जैसा आपको सहज लगे। मन की शांत स्थिति, चारों ओर शांति का वातावरण, और इस शांति में अनुभव करेंगे कि मैं एक शांति पुंज, शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र की तरह है। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, और मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं शांति पुंज, शांत स्वरूप आत्मा हूं। मस्तक के मध्य एक दिव्य प्रकाश अनुभव कीजिए। ये प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं प्रकाश पुंज, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। पूरे शरीर के चारों ओर एक पावरफुल ओरा, सकारात्मक श्रेष्ठ भावनाओं से, शुभकामनाओं से उत्प्रोत बस उस ओरे में सबके प्रति दिल का स्नेह और श्रेष्ठ भावनाएं मैं आत्मा सुख शांति आनंद प्रेम से भरपूर हूं। परम धाम की निवास से जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है, और इस सुनहरे लाल प्रकाश में मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं सुप्रीम पावर, उस परम शक्ति परमात्मा को। वो भी ज्योति स्वरूप है और मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूं। उनसे शांति की किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। प्रातः काल के सूर्य की किरणों की भांति अनुभव कीजिए कि वो प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप। ईश्वर भगवान जो हम सब के पिता हैं, जब वो शक्ति मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। यही भाव ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। यही भाव जागृत हो रहा है कि जब ईश्वर मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और उनके साथ का अनुभव करते हुए आज के चिंतन की धारा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। शांति शांति शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप विगत दो दिनों से मॉर्निंग राजयोग सत्र की गहराई का अनुभव कर रहे हैं और विशेष दो सत्र हुए हैं, एक आत्मस्वरूप का परिचय और अनुभव और कल का सत्र था उस परम शक्ति परम सत्य का परिचय और उसका अनुभव। क्योंकि जब किसी के साथ गहरा कनेक्शन जुड़ जाता है तो स्वतः ही आत्मा के भीतर एक शक्ति का एहसास होता है। आप सभी ने श्रीमद् भगवत गीता में ये श्लोक सुना ही होगा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता, उसे शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वो मैं हूं। यानी वो मैं सदा है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो जब मैं सत्ता का कभी विनाश नहीं होता, मेरे का होता है ना? ये मेरा शरीर, इसको जलाते हैं, इसका विनाश होता है, लेकिन मैं का कभी नहीं, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं। वैसे ही अगर मैं का विनाश नहीं होता तो जो आत्मा के पिता हैं परम शक्ति परमात्मा, वो भी ज्योति स्वरूप है, तो उनका भी कभी विनाश नहीं होता, वो सदा है, इसलिए उन्हें सदा शिव कहा गया। और कल सुना ही होगा कि हम उन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं। बाबा माना पिता, कोई दाढ़ी मूछ वाला बाबा नहीं, ज्योति स्वरूप आत्मा के पिता, ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा। साइज में बड़े नहीं है, गुणों में परम है, इसीलिए उन्हें परम आत्मा कहा गया। अब जैसे देखिए कि आग के किनारे जाते हैं तो गर्माहट महसूस होती है, सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का आभास होता है। ऐसे ही जब आत्मा का कनेक्शन उस परम शक्ति परम सत्ता के साथ जुड़ता है तो उनके जो भी गुण हैं वो हमारे भीतर आएंगे कि नहीं आएंगे? स्वतः ही आते चले जाएंगे। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है परमात्मा की? जैसे लौकिक पिता की प्रॉपर्टी होती है, बहुत बड़ा मकान है, जमीन जायदाद है, खेत खलिहान है, बैंक बैलेंस बहुत है। अगर एक पुत्र को सब कुछ पता है, पता ही रहता है, तो उसको पता है ना कि ये प्रॉपर्टी सारी किसकी है? मेरी है। पिता की प्रॉपर्टी पर मेरा पूरा अधिकार है, ये पुत्र को पता है। उसका नशा भी रहता है उसको। एक छोटा बच्चा भी होगा ना, फोर्थ फिफ्थ में पढ़ता होगा, तब भी उसको नशा रहता है। उसने एक रुपया भी कमाया नहीं है, लेकिन पिता की कार मेरी कार, कहें किसकी कार? मेरी कार है, मेरा मकान है, नशा रहता है उसको। तो हमारे पिता प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, तो हमें भी तो इस बात का नशा रहना चाहिए ना कि उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो किसकी है? मेरी है। अब अगर वो प्रेम मेरी प्रॉपर्टी है, शांति मेरी प्रॉपर्टी है, आनंद मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर हम अशांत क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? कहीं कनेक्शन गड़बड़ तो नहीं है? ये सोचना पड़ेगा हम सभी को। जैसे मान लीजिए एक बच्चा मेले में जाता है अपने पिता के साथ कार में बैठ के, तो उसके अंदर बहुत खुशी है कि झूला झूलूंगा, होटल में जाकर के मुझे जो पसंद है वो मैं खाऊंगा। लेकिन जब वो झूले में बैठता है, मेले में बहुत भीड़ है, और जैसे ही बच्चा झूले से उतरता है, पिता बच्चे को, बच्चा पिता को ढूंढ रहा है, लेकिन भीड़ के कारण वो बच्चा गुम हो जाता है। अब जो थोड़े देर पहले पिता के साथ का नशा था, खुशी थी, झूले में भी बैठ के वो हाथ हिला रहा था पापा को देख के, वो नशा अब नहीं दिख रहा है पापा, तो उतर गया। अब वो ढूंढ रहा है, पापा भी ढूंढ रहे हैं बच्चे को, और बच्चा भी ढूंढ रहा है। अब ढूंढते ढूंढते अब बच्चे को बहुत भूख लगी है। पिता ने तो कंट्रोल कर लिया भूख पर, क्योंकि बच्चा चाहिए, खोज जारी है, लेकिन वो बच्चे को बहुत भूख लगी और वो किसी होटल में पहुंच जाता है कि मुझे कुछ खाने दे दो। तो होटल का मालिक कहता है कि ऐसे तो नहीं मिलेगा ना, भिखारियों को नहीं मिलता। थोड़े देर पहले जो अधिकारी था वह मांग रहा है, क्यों क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। तो अगर हम भी शांति, प्रेम, आनंद इसको खोज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा उस परम शक्ति के साथ टूटा हुआ है। इसीलिए वो प्रेम के सागर, लेकिन हम प्रेम के प्यासे। वो शांति के सागर, लेकिन हम शांति के प्यासे, है ना? तो मैं अपना ही पर्सनल अनुभव शेयर करती हूं, क्योंकि आत्मा की तो कोई उम्र नहीं होती ना। तो मुझे ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी खोज खत्म हो गई और मेरी यात्रा चल रही है। गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। जब ये परिचय मिल गया, कनेक्शन जुटा, तो अब मुझे किसी से भी प्रेम की भीख मांगने की जरूरत नहीं है ना, कि आप मुझे प्रेम दो। अब जैसे एक सिंपल बात कि पत्नी कहती है पति से कि क्या आप मेरे से थोड़ा सा भी प्रेम से नहीं बात कर सकते, मैं शांत रहती हूँ, है ना, घर का सारा काम करती हूँ, आप ऑफिस से आते हैं लेकिन मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, थोड़ा प्रेम से बात कीजिए ना। या कई बार पति कहता है पत्नी से कि क्या तुम प्रेम से नहीं बात कर सकती, थोड़ा प्रेम से मुझे मुझसे बात करके तो देखो। अब जैसे देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, आपको बहुत तेज खांसी आ रही है या प्यास लग रही है, आप या तो उठ करके जाएंगे, लेकिन खांसी का प्रवाह बहुत ज्यादा है। मेरे सामने पानी रखा हुआ है, मैंने झूठा नहीं किया है, तो मैं क्या कहूंगी कि भैया आप आ जाओ, पानी आप पी लीजिए। क्यों, मैंने ऑफर किया आपको कि आप पानी पी लीजिए? मेरे पास था पानी, अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं नहीं दे सकती थी आपको पानी। अब सोचिए कि हम प्रेम की डिमांड किसके साथ कर रहे हैं? जिसके पास प्रेम नहीं है, उसी से सोच रहे हैं ये प्रेम से बात करे। अब अगर ये शब्द कहें तो अच्छा नहीं लगेगा कि एक भिखारी भिखारी को तो कुछ नहीं दे सकता ना, एक भिखारी भिखारी को कुछ नहीं दे सकता। एक संपन्न व्यक्ति जो धन धान्य से संपन्न हो वो भिखारी को कुछ दे पाएगा क्योंकि उसके पास है। तो आज सभी एक दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं, शांति से बात करिए ये कह रहे हैं, लेकिन सोचिए कि एक डिस्चार्ज बैटरी को क्या देगी? तो चार्ज तो होना पड़ेगा ना। आप सभी आए होंगे, सबके पास मोबाइल है अभी, है ना? सुबह ही चार्ज कर लिया था, क्यों क्यों चार्ज किया? सुबह नहीं करते ना आप, क्यों चार्ज किया आपने मोबाइल को, बताइए? अगले व्यक्ति से बात करनी है, किसी का फोन आ गया तो, और मीडिया वालों को तो बहुत जरूरत है, व्हाट्सएप चेक करना है, मेल चेक करना है, कई बातें हैं। लेकिन क्या हमने कभी भी ये सोचा कि मुझ आत्मा रूपी बैटरी को भी चार्ज करना है? मोबाइल के लिए सोचा सुबह चार्ज कर लेना है ताकि दिन भर किसी और के साथ कम्युनिकेशन मेरा अच्छा रहे। ऐसे ही अगर मैं स्वयं आत्मा चार्ज हो जाती हूं तो दिन भर चार्जिंग प्रोसेस में रहकर मैं दूसरों को भी चार्ज कर पाऊंगी। अब चार्जर कौन है? आपने है ना कनेक्ट किया, अब आपको पता चलता है बैटरी अभी इतनी चार्ज हुई, इतनी चार्ज हुई, इतनी। आप सोचते कम से कम 90 प्लस तो कर ही लेते हैं क्योंकि दिन भर फिर चार्ज नहीं कर पाएंगे, है ना? क्योंकि पावर हाउस के साथ कनेक्शन था, आपने सेट किया और आपका मोबाइल चार्ज हो गया। उसी प्रकार अब ये परिचय तो मिल गया कि मैं आत्मा हूं और परम शक्ति परमात्मा, उनके साथ जुड़कर जब मैं चार्ज होती हूं तो मेरे भीतर शक्तियां आती हैं। आज का विषय यही है कि विधि क्या है अपने आप को चार्ज करने की, और साथ साथ जब हम चार्ज हो जाते हैं तो मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है। देखिए, एक बात कहना चाहूंगी कि वाइट ड्रेस पहनने से कुछ नहीं हो जाता, या मैंने बैच लगा लिया उससे भी मैं चार्ज हो जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। यूनिफॉर्म से चार्ज हो जाऊंगी ये भी बात नहीं है, ठीक? ये तो हम जो समर्पित हैं उनका ये यूनिफॉर्म हो गया, जैसे स्कूल का एक ड्रेस होता है, ऐसी समर्पित बहनों का भाइयों का ये ड्रेस है। लेकिन ड्रेस ये वाला पहनने के बाद भी, ये बैच लगाने के बाद भी मेरा कनेक्शन, मुझ आत्मा का कनेक्शन परम शक्ति परमात्मा के साथ नहीं है, तो मैं ड्रेस पहनने के बाद भी शक्तियों का अनुभव नहीं कर पाऊंगी। इसको समझना बहुत जरूरी है। बस दूसरे जान सकेंगे कि एक ब्रह्मा कुमारी है या ब्रह्मा कुमार है, लेकिन वो स्वयं कितना ध्यान के माध्यम से, सकारात्मक चिंतन के माध्यम से अपने आप को चार्ज करते हैं, ये स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। और दिन भर कर्म क्षेत्र में गुणों का प्रवाह उनके जीवन से दिखाई देता है। कि इनके कर्म में ये श्रेष्ठता है, इनके बोल में वो प्रभाव है, मिठास है। आपने अनुभव किया होगा कि कई बहुत मीठा बोलते हैं, जैसे एयर होस्टेस होती हैं, है ना, वो भी तो मीठा बोलते हैं। लेकिन क्या उनके साथ आपका कोई ऐसा कनेक्शन है क्या? नहीं, वो कहेगी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, बहुत मीठा बोलेगी। कोई कोई है स्वार्थ के लिए भी मीठा बोलते हैं। आपसे उन्होंने बातचीत की और जैसे वो निकले तो आपके मुख से कभी कभी निकलता है कि ये बोलते बहुत मीठा है लेकिन अंदर से कड़वे हैं। आप दूसरे को भी आगाह कर देते हैं कि इनसे संभल करके रहना, मुख की मिठास है लेकिन अंदर से मिठास नहीं है। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? उन्होंने तो बहुत मीठा बोला था, तो आपको कैसे पता चला कि अंदर के मीठे नहीं है? चलन से, उनके वाइब्रेशन, या उन्होंने जो ऐसे कर्म किए पीठ पीछे, उनसे एहसास हो जाता है हमें कि भावना है ना, क्योंकि और ये भावनाएं जो है वो जब पशु पक्षियों को भी महसूस हो जाती है तो क्या इंसान को महसूस नहीं होगी? आपने एक उदाहरण सुना होगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो रोज समुद्र के किनारे जाते हैं और कुछ दाना लेके जाया करते थे, और जैसे ही वो दाना फेंकते थे तो कुछ पंछी आसपास आ जाते थे, कोई यहाँ बैठ जाता, कोई यहाँ, कोई इधर, सब बहुत प्यार से वो दाना चुगते थे उनके पास बैठ करके। एक बार उनका पोता उनके साथ आया तो पोते ने देखा कि दादाजी को सभी पंछी कितना प्यार करते हैं, सब बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। और दो तीन दिन जाने के बाद महसूस हुआ कि एक सुंदर सा पंछी रोज आता है, रोज। तो उसने चौथे दिन कहा दादा को कि दादाजी वो पंछी मुझे बहुत प्यारा लगता है, हम उसको पकड़ लेते हैं ना, मैं पिंजरे में रखूंगा उसको, बहुत अच्छा लगा मुझे वो पंछी। तो दादाजी ने कहा नहीं बेटा, पंछियों को स्वतंत्र विचरण करने दो, स्वतंत्र रहने दो, उनको पिंजरे में नहीं बांधना। तो वो पोता बहुत जिद करता है, तो अगर कोई यहाँ दादा बैठे होंगे तो जानते हैं ना, उनका कहना मानना पड़ता है। तो आज विचार दादाजी के कि उस पंछी को क्या करना है, पकड़ना है। आज जब वो समुद्र के किनारे गए, है ना, दाना फेंका, पोता भी साथ में था, लेकिन आज कोई पंछी उनके पास नहीं आया। क्यों? न तो कुछ बोल में ऐसी बात थी, न कोई वो बोल बोल करके बुलाते थे, न कुछ ऐसा मिठास के साथ कुछ अभिव्यक्त कर रहे थे, लेकिन आज उनके वाइब्रेशन काम कर रहे थे कि आज पंछी को पकड़ना है। तो जब उसने कैच कर लिया तो हम भी तो कैच कर लेते हैं ना। ठीक है, साथ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो चाहे बॉस हो, चाहे हमारे सीनियर्स हो, हम सबके साथ कार्य करते हैं क्योंकि अपने घर को भी चलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उस संगठन में सबके वाइब्रेशन हमें कैच होते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। क्या आप अपने सीनियर को कभी कुछ अपशब्द कह पाएंगे? जूनियर को कह देंगे भले, लेकिन सीनियर को या बॉस को कह पाएंगे? क्यों? क्योंकि एक प्रोटोकॉल है ये कि आप अपने सीनियर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अब मान लीजिए बॉस ने आपको कुछ बहुत कटु शब्द कह दिए, लेकिन जी सर कहेंगे आप और उनके सामने मुस्कुराएंगे भी, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो जो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड होगा उसको कहेंगे ऐसा लग रहा था ना कि मैं भी प्रत्युत्तर दे दूं, लेकिन सीनियर है ना, बॉस है ना, इसलिए मैं नहीं कह पाया। नहीं तो ऐसा लग रहा था, वो तो आप शब्द में नहीं कहोगे, ऐसा लग रहा था बस। अब फॉरेन कंट्रीज में क्या हुआ कि सबको पता है कि अंदर में हमें आवेग आता है, क्रोध आता है, तो एक रूम ऐसा बनाया गया जिसमें बॉस का भी फोटो है या कुछ ऐसे बैलून्स हैं कि गुस्सा आया लगाओ उस पर गुस्सा, लेकिन आप किसी व्यक्ति पर गुस्सा नहीं लगा सकते हो, गुस्सा भी नहीं कर पा रहे हो सीनियर के ऊपर, लेकिन उस रूम में जाकर आपको कोई नहीं देख रहा है कि आप कहाँ कर रहे हैं। तो अंदर का क्रोध ऐसा कहते हैं शांत हुआ, लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीका तो नहीं हो सकता, अंदर में वो भरा हुआ है। इसलिए जब हम ध्यान की सही विधि को अपनाते हैं, और अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ध्यान और कुछ नहीं है, मेडिटेशन कुछ नहीं है, मेडिटेशन माना प्रेम, बस एक शब्द में समझ जाइए, ढाई अक्षर। बचपन में सुनते थे कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माही, है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो शास्त्रों का ज्ञान हो या न हो, ठीक है, कुछ श्लोकों के माध्यम से हमको महसूस होता है कि नहीं मेरे जीवन का आचरण ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या किसी को कोई भी शास्त्र याद न हो, कोई श्लोक याद न हो, कोई मंत्र याद न हो, तो क्या वो मेडिटेशन नहीं कर सकता क्या? क्योंकि मेडिटेशन यानी प्रेम है, ये विधि है बस। आप यहां से इस डेढ़ घंटे के लेक्चर में और कुछ पकड़ करके न जाएं भले, लेकिन प्रेम को पकड़ करके जाएं। लेकिन प्रेम कैसा, आज सुबह ही हमारी चर्चा हो रही थी एक बहन के साथ कि अपनी भावनाओं को कभी खराब न करें, क्योंकि ये ओरा जो है ना, यही हमारी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी को तैयार करता है। जैसे चुंबक की तरफ लोह कण स्वतः ही आकर्षित होकर के आते हैं ना, चुंबक लोह कणों के पास नहीं जाता है। तो प्रेम, ध्यान, शुभ भावना, शुभ कामना, एक को पकड़ा हमने, ये सारी क्वालिटीज हमारे भीतर आती है। हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी थी, तो उनकी पर्सनालिटी यही थी, वो जैसे सभा के बीच में एंट्री लेती थी, पूरी सभा में एक मुस्कान, प्रेम का संचार हो जाता था। बहुत निकट से उनको देखने का अवसर मिला था, 2007 में उन्होंने देह त्याग दी, लेकिन अनुभव हुआ था कि वाकई में एक पावरफुल पर्सनालिटी है, क्योंकि विधि के आधार पर ही तो शक्ति आती है ना। आज विधि को भी थोड़ा सीखेंगे और थोड़ा शक्तियों के बारे में भी सुनेंगे। तो एक बार जजेस का प्रोग्राम चल रहा था, तो दादी जी ने पूरी सभा से पूछा, सारे 1000 जज बैठे हुए थे, उस सभा में मैं भी थी, छोटी थी, लेकिन दादी जी ने पूछा उस सभा में कि यहाँ कोई भी ऐसा जज बैठा है जिसने अपने जीवन काल में कभी भी झूठ नहीं बोला होगा, तो सभा में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, किसी ने नहीं, निर्णय देने वाले हैं, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोला हो ऐसा कोई नहीं था सभा में। तब दादी जी ने सभी के बीच में हाथ उठाया कि मैंने जब से मुझे समझ आई है, उन्होंने 3 साल की उम्र से बात की कि 3 साल की उम्र से लेकर अभी तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। तो पूरी सभा में तालियां बजी। दादी ने कहा, आप दूसरों को निर्णय देते हैं ना, तो कम से कम प्रैक्टिकल अपने जीवन में कुछ सिद्धांत को, लगता है ये सिद्धांत है ना, ये कलयुगी दुनिया में काम नहीं करता। जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है। तो हम सोचते हैं हम इस पथ पर चले हैं, लेकिन जब दूसरे को देखते हैं ना, ये हावी होते हैं मेरे ऊपर, टांग खींचते हैं मेरी, और इनको कितना सब कुछ जल्दी प्राप्त हो गया, लेकिन मैंने अपना जीवन मूल्यों के आधार पर व्यतीत किया, तो मुझे सब प्राप्तियां बहुत देरी से हो रही हैं। तो मैं भी थोड़ी अपनी दिशा बदल लेता हूँ, बदल लेती हूँ। लेकिन वाकई में ये मेरे जिंदगी का अनुभव कह रहा है। और जब दादी जी को भी सुना था, तो मुझे लगा कि देखो, इस सिद्धांत के आधार पर दादी जी को इतनी प्राप्ति हुई, तो मैं भी अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों को पकड़ती हूँ। इसको तो पकड़ा ही पकड़ा है ना, झूठ वाली बात, सत्य के साथ चलना है। और एक थॉट अंदर चला गया कि सत्य के सूर्य को असत्य के बादल ढक नहीं सकते, सत्य के सूर्य को असत्य के बादल ढक नहीं सकते। तो कभी झूठ बोला होगा तो मैं उसको रिकॉल करने लगी और शेयर कर दी कि मैंने कब कब थोड़ा सा कभी झूठ बोला था। उससे दूसरों को नुकसान नहीं हुआ था कुछ भी, लेकिन झूठ तो झूठ ही था। लेकिन बचपन में पढ़ाई के दौरान सुना था कि कभी कभी दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा सुना था, जिससे दूसरे का भला हो जाए, लेकिन गलत करके नहीं, आध्यात्मिकता के आधार पर। लेकिन दादी जी का जब ये सुना, तो मेरे अंदर एक विचार कौंधा, और बचपन से परम शक्ति परमात्मा से एक जुड़ाव महसूस हुआ, और अंदर में ये विचार बहुत गहराई में चला गया कि मैं इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाती हूँ कि मैं अपने से बड़े लोगों को, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, मैं अपने से बड़े लोगों को कभी भी जीवन में जवाब नहीं दूंगी, उनसे जबान नहीं लड़ाऊंगी, उनसे डिस्कशन नहीं करूंगी। प्यार से मैं कोई बात समझा सकती हूँ, बड़ों को, पेरेंट्स हो जो भी हो, कभी कभी हमको लगता है यहाँ पर वो रॉन्ग है मान लीजिए, लेकिन हमारे बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए ना। तो इस सिद्धांत को जब मैंने अपनाया, तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल के अंदर महसूस किया कि केवल इस मूल्य को अपनाने के बाद, बचपन से था या पता नहीं संस्कार में उतर गया था, कि मुझे जीवन में प्राप्तियां बहुत हो रही हैं, सबकी दुआएं मिलते हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है, पेरेंट्स का दिल से आशीर्वाद मिलता है, और जितने भी बड़े हैं जिनसे मिलते हैं वो दुआ देते हैं। तो कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि दवा काम नहीं कर रही है बिल्कुल, क्या करो, दुआ करो। तो क्या ध्यान की विधि को सीखकर हम दुआओं का स्टॉक जमा कर सकते हैं? रोज किसी न किसी से मुझे दुआ मिले, कुछ ऐसा करूं। एक बार हमारे एक अमेरिका के भाई, जब वहां पर है ना 2001 में ही शायद जो हादसा हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो उन्होंने जुड़े हुए हैं वो ब्रह्मा कुमारी से, उन्होंने 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस की एक थीम तैयार की है। जब कहते हैं पहला प्लेन टकराया उस बिल्डिंग से, तो काफी जोरदार धमाका हुआ, और जो दूसरी बिल्डिंग थी वो भी हिल गए, लेकिन कुछ लोग लिफ्ट से उतरने के लिए जल्दी, भीड़ वहीं लगी हुई थी लिफ्ट में, लिफ्ट के पास, तो उन्होंने सीढ़ी से उतरने का प्रयास किया और कई लोगों को मोटिवेट करते रहे। उस समय शायद वो 84 फ्लोर पर थे शायद, और उन्होंने सबको मोटिवेट किया कि उतरो उतरो सीढ़ी के रास्ते से उतरो, और वो सबको आगे करते, आप आ गया हो आप आ गया हो। और कहते हैं कि जैसी वो उस भीड़ के साथ नीचे आए, दूसरी बिल्डिंग भी धराशायी हो गई। तो पत्रकारों ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में भी आप इतने कूल कैसे थे। तो उन्होंने कहा, बस मैंने परमात्मा महावाक्यों में, ब्रह्मा कुमारीज में ये सुना था कि दुआओं का खाता बढ़ाओ, दुआओं का धन इकट्ठा करो, दुआओं का धन इकट्ठा करो। और ये लाइन उस समय मेरे अंदर ऐसी आई कि मुझे आज ये करना है, आज कईयों की दुआएं मुझे प्राप्त होंगी। और उसके बाद उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस का। तो क्या अगर मैं दिन भर में जिनसे भी मिलूं, किसी को आवश्यकता है कि मैं उनके दुख को सुन ही लूं, सुन सकते हैं? आज ना किसी के पास इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है। कहते हर चीज है लोगों के दामन में, पर जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में अपने लिए ही वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। सारे नाम मोबाइल में हैं, सब है नाम, लेकिन कभी दूर जाते हैं, सच्चाई है ये। माता पिता से भी बात करने का वक्त नहीं, बिजी है ना हम बहुत। जिनकी दुआओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी हमें, और वो जब हमारे जीवन में मिसिंग हो जाते हैं, नैन गीले हो जाते हैं इस बात से, जब वो समझ सकते हैं आप, है ना, मिसिंग मना क्या, तब हमें लगता है कि काश 2 दिन पहले ही मैंने उनसे प्यार से बात कर ली होती तो, काश मैं उनके साथ बैठ गया होता तो, काश मैंने उनके मस्तक पर हाथ फेर लिया होता तो। लेकिन वो आत्मा अब आगे की यात्रा में निकल चुकी है। तो जो फीलिंग आती है हमारे भीतर, अब मैं क्या करूं, अब आगे की यात्रा जो मेरी बची हुई है उसमें अब मैं अपने बड़ों के साथ, अपने बराबर वालों के साथ, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करती हूं, क्योंकि यही लेके जाना है। धन आवश्यक है आवश्यक, लेकिन धन सब कुछ नहीं है ना। 4 प्रकार कह सकते हैं कि मानव जीवन में जो 4 प्रकार का सुख चाहिए, तन का, मन का, धन का, संबंध का, चारों जरूरी है। तन का भी सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि कमर ही दुखती है ना, हम परेशान हो जाते हैं। दांत ही दुखता है ना, परेशान हो जाते हैं। सिर दुखता है, तो तन का भी सशक्तिकरण चाहिए, धन भी चाहिए पर्याप्त जीवन यापन के लिए, संबंध भी बहुत अच्छे चाहिए। लेकिन अगर पहला स्थान मैंने धन को दे दिया, पहला स्थान, और संबंध की तरफ मैंने वक्त ही नहीं दिया, तो बताए ना, जब मिसिंग होगी जीवन में वो, तब हमें एहसास होता है। तो सर्वप्रथम परमात्मा के साथ गहरा संबंध, प्रेम का ये विधि है ध्यान की। क्योंकि अगर मैं विधि केवल शब्दों के माध्यम से समझाती रही तो मुझे 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए भावनात्मक गहराई में जाकर हम ध्यान की विधि को सीख लेते हैं। आप ऐसे ही तो सबको याद नहीं करते ना। चलो आज हमारा आपके साथ एक केवल ऐसी फेस टू फेस परिचय हो रहा है। हो सकता है यहाँ 50 लोग बैठे हों, तो आप मुझे कभी रास्ते में मिलेंगे, मैं भी मुस्कुरा दूंगी, आप भी मुस्कुरा देंगे, लेकिन आप मुझे अच्छे से पहचान जाएंगे क्योंकि अभी वर्तमान समय में मंच पर हूँ। आप कहेंगे कि दीदी मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए थे ना, तो वहां आपको देखा था। तो ये याद होती है परिचय के आधार पर याद, कोई बायोडाटा भी सुना देंगे मेरा, है ना, तो परिचय मिल गया। और मुझे अभी आपका नाम भी नहीं पता, आप कहाँ से आए हैं ये भी नहीं पता, लेकिन फिर आप रास्ते में मिलेंगे तो बताएंगे मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ। तो परिचय हो गया। तो एक याद होती है परिचय के आधार पर याद, दूसरी याद होती है संबंध के आधार पर याद, तीसरी होती है स्नेह के आधार पर याद, और चौथी है प्राप्ति के आधार पर याद। एक हुआ ऐसे चलते फिरते परिचय हो गया, ट्रेन में परिचय हो गया, या आप जहां कार्य करते उनके साथ परिचय है आपका, तो आपके घर में कुछ शादी ब्याह होता है ना, कुछ फंक्शन है, गृह प्रवेश है, तो आप परिचय वालों को कार्ड देंगे कि नहीं देंगे? ट्रेन वालों को नहीं देंगे, लेकिन आप जिनके साथ कार्य कर रहे हैं उनको कार्ड देंगे, भले बॉस के साथ गहरा कनेक्शन नहीं है, ठीक, फिर भी कार्ड देंगे कि नहीं देंगे? कि कहीं है ना सीनियर है या बॉस है, ये ना कह दे अरे तुम्हारे घर में शादी हुई, गृह प्रवेश हुआ, तुमने बुलाया ही नहीं मुझे, तो आप उनको भी कार्ड देंगे। तो एक है परिचय के आधार पर याद, है ना, सबके हम नाम लिखते हैं और उनको कार्ड देते हैं, लेकिन गहरा कनेक्शन नहीं है। दूसरी है संबंध के आधार पर याद, माता पिता के साथ हमारा संबंध होता है, भाई बहन के साथ गहरा संबंध, लेकिन सबसे गहरा मुझे एहसास होता है माँ के साथ हम सबका रहता है, सेकंड शायद पिता कहे कि दोनों के साथ एक जैसा। माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा है ना, तो वो गहरा कनेक्शन होता है माँ के साथ। अब बच्चा आफ्टर 12th पुणे मुंबई बाहर पढ़ने के लिए जाता है, आज तक वो माता पिता को छोड़ के नहीं गया, लेकिन अब पढ़ने के लिए बाहर चला गया है, फोन में बातें हो रही है, थोड़ी सी बच्चे को खांसी आती है ना, तो माँ कहे कि बेटा ध्यान रखना। बात करते करते माँ के नैन गीले हो जाते हैं। अब जिनको होम सिकनेस बहुत है, तो बच्चा भी अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, कोई कोई तो एडजस्ट कर लेते हैं आजकल, लेकिन कोई कोई नहीं कर पाता है, तो माँ से बात करते करते उसके भी नैन गीले हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई भी है, अपना करियर भी देखना है, तो वो अपने आप को एडजस्ट करता है, लेकिन ये नैन गीले क्यों हो रहे हैं? जो इतने साल तक साथ रहे ना, माँ ने हमेशा ध्यान रखा, स्कूल से आए गरम गरम खाना खिलाया, बुखार हुआ दवाई खिलाई, है ना, हाथ पैर दबा दिए, तो माँ के साथ गहरा कनेक्शन। हम कभी पिता को नहीं कहते कि पाँव दबा दो, किसको कहते हैं? माँ को, पैर दुख रहा है। माँ भी सहज बाहर खेल भी रहा होगा ना बच्चा, तो कंटिन्यूस छोटे बच्चे की तरफ माँ का ध्यान कि कहीं गिर न जाए, चोट न लग जाए। तो ये संबंध के आधार पर याद होती है, जहां मोह है, और ये याद रुलाती है हमें। एक याद आती है, एक याद रुलाती है, ये मोह वाली याद होती है, और एक याद है स्नेह भरी याद, जिस स्नेह में हम खो जाते हैं। यहाँ किसके किसकी मैरिज हो चुकी है वो हाथ उठाइए। अच्छा, अब मैं आपको पीछे की ओर ले चलती हूँ, भूतकाल की ओर। जब आपकी मैरिज तय हुई होगी, अभी आपने साथ रहना शुरू नहीं किया, अभी तो क्या है लिव इन रिलेशनशिप वाला बहुत चल रहा है ना, लेकिन आप जो सब बैठे हैं उस समय पेरेंट्स शादी तय कर लेते थे, या चलो अपनी पसंद की भी हुई मान लीजिए, लेकिन ऐसा रहना नहीं हुआ साथ में, बातचीत भी नहीं हुई, बस पसंद कर लिया। जब शादी तय हुई होगी, अभी शादी हुई नहीं है, उस समय की याद कैसी थी आपकी? आप उसे याद कीजिए, है ना, कैसी थी याद? उस स्नेह में खो जाते थे, है ना, कि अरे अब थोड़े दिन के बाद शादी होने वाली है ना, साथ रहेंगे, ये बात करूंगा, ये बात करूंगी, है ना, इस याद में खो जाते हैं। और ये याद ना अंदर में एक सुकून का अनुभव कराती होगी। कोई कहता होगा कि अरे कहाँ खोए हुए हो, ऐसा भी कह दिया होगा, तो कहेंगे बस थोड़ा सा ऐसे ही, कैसे अभिव्यक्त करें उसको। तो ये याद है, स्नेह भरी याद जिसमें खो जाते हैं। आप कहेंगे आपको कैसे पता चला, आपकी तो मैरिज नहीं हुई, ये पिछले जन्म का कुछ रहता है और परमात्मा को साजन बनाया है ना, तो वैसे ही हम लोग भी याद करते हैं परमात्मा को, खो जाते हैं उनकी याद में, है ना। और चौथी याद है स्वार्थ के कारण किसी को याद करते, प्राप्ति भरी याद। किसी के साथ कुछ बिजनेस डील किया, करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है, वो पार्टी रात को भी आएगी तो कहेंगे नहीं कोई दूसरा डील मत कर ले, मुझे ही है ना ये करना है, तो रात भर जागेंगे। तो प्राप्ति भरी याद, तो एक है परिचय के आधार पर याद, दूसरी है संबंध के कारण याद, तीसरी है स्नेह भरी याद, और चौथा है प्राप्ति भरी याद। अब हमारी याद, क्योंकि आज हम विधि सीख रहे हैं ध्यान की, तो आपकी याद भगवान के साथ किस तरीके की है? याद आती है, याद रुलाती है, या स्नेह में खो जाते हैं, या स्वार्थ के कारण याद करते हैं कि भगवान बेटी की शादी जम जाएगी ना तो पेड़ा चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, या तीर्थ यात्रा करके आ जाऊंगा, बेटे को नौकरी लग जाएगी या मकान बन जाएगा, है ना। तो आजकल भगवान के साथ ऐसी याद ज्यादा होने लगी, आपकी कैसी है इसमें वाले? अरे वाह बहुत अच्छा है। और आप सबकी? स्वार्थ वाली है, है ना। देखो सच तो कहते हैं ना, है ना, सच कहा आपने, तो स्वार्थ वाली याद हो गई कि भगवान आप ये करोगे तो मैं ये करूंगा, नहीं तो पेड़ा नहीं चढ़ने वाला, पेड़ा नहीं चढ़ने वाला, तीर्थ यात्रा नहीं होने वाली। तो भगवान के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, होनी चाहिए भगवान के साथ स्नेह भरी याद। तो देखिए यहाँ परिचय भी मिला है कल आपको शिव बाबा का, अब संबंध जोड़िए। भक्ति मार्ग में कहा है हमने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम मेरे सब कुछ हो, तन मन धन सब तेरा, कुछ नहीं मेरा। लेकिन अंदर में क्या था? तन मन धन सब मेरा, कुछ नहीं तेरा। ऐसा नहीं कि सब मंदिर में जाके पूरा सब कुछ वहीं दे देना है या यहाँ दे देना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रस्टी बनकर संभालना। तो संबंध भी बड़ा गहरा जुड़ रहा है, माँ का भी, पिता का भी, दोस्त का भी, साजन का भी। आप अगर भक्ति मार्ग में भी देखेंगे ना, तो चाहे हम ध्रुव की बात करें या प्रह्लाद की बात करें, तो ध्रुव और प्रह्लाद ने भगवान को अपना क्या बनाया? पिता बनाया, है ना। अर्जुन ने क्या बनाया? दोस्त बनाया, है ना, सारथी बनाया, दोस्त बनाया, मित्र बनाया। मीरा ने क्या बनाया? मीरा ने साजन बनाया, मीरा ने साजन बनाया। अनुसुया ने क्या बनाया? बच्चा बनाया, ठीक है ना। तो तो ये देखिए सर्व संबंध की बात। और अगर तुलसीदास जी को भी देखें, कबीर दास जी को देखें, तो उन्होंने क्या बनाया? गुरु बनाया। तो एक एक संबंध जोड़ा गया भगवान के साथ। तो आज इस विधि को सीखे कि परिचय भी मिला, संबंध में मैं कौन सा संबंध परमात्मा के साथ गहरा जोड़ूं, जिससे मुझे ना परमात्मा के साथ बातचीत करने में बड़ा मजा आ जाए। प्रेमी और साजन के साथ शुरू शुरू में, या सजनी के साथ शुरू शुरू में, लेकिन प्रेमी के साथ बड़ा मजा आता है बातचीत करने में। तो अगर प्रेमी बना ले तो मजा आएगा। तो मेडिटेशन क्या है? प्रेम के आधार पर कम्युनिकेशन, भगवान के साथ बातचीत। जैसे हमको कोई व्यक्ति बहुत प्यारा लगता है तो हम उनके साथ घंटा दो घंटा बैठ जाते हैं, बाद में घड़ी देखते हैं, कहते हैं आपके साथ बहुत अच्छा लगता है बातचीत करना। और कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता हमें, तो अगर दूर से ही देखते हैं ना तो क्या कहते हैं, अरे वो आ रहा है ना, मैं थोड़ा इस रास्ते से चला जाता हूँ, नहीं तो दिमाग खाएगा पूरा। हम उसके साथ बातचीत करना नहीं चाहते। अगर मेरा कम्युनिकेशन, मेरी बातचीत संबंध के आधार पर परमात्मा के साथ बहुत गहरी हो जाए, तो दो घंटा भी बैठे ध्यान माना, मैंने कह दिया प्रेम, और वो प्रेम भरा वार्तालाप, तो उसमें आपको समय का पता चलेगा। हमारी दादियां, हमारे सीनियर है ना, दीदियां जो है हमारी, वो हम लोग को मेडिटेशन करवाया करती थी, जिसको यहाँ पर हम लोग स्पिरिचुअल लैंग्वेज में भट्टी कह देते हैं। क्या कहते हैं? भट्टी। भट्टी में ईंटें क्या होती हैं? पकती है ना। तो चूंकि 6 वर्ष की उम्र से जुड़ी हुई हूँ ब्रह्मा कुमारी से, तो दीदियां जो दादियां ध्यान करवाती थी 8-8 घंटा 12-12 घंटा सकारात्मक चिंतन की बातें, जिससे हमारी एनर्जी बढ़ जाती थी। और ध्यान, आज शाम को है शायद आप लोग का ध्यान ना, पिकनिक भी है और शाम का मेडिटेशन भी है नुमा शाम की बेला में, और कल का भी लेक्चर मिस मत करना कार्मिक अकाउंट को लेकर के। तो पॉजिटिव थॉट और उसके आधार पर मेडिटेशन। तो अभी हम डिस्चार्ज हुए, हम लोग को कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हम लोग को क्रोध आ रहा है, उदासी आ रही है, घृणा, ये सब है हमारे अंदर, तो हम लोग डिस्चार्ज हैं। जब हम चार्ज होंगे तो आदरणीय सविता दीदी जी ने आपको बताया होगा कि 7 गुण हमारे अंदर विकसित होते हैं, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति। हम चार्ज हो गए, मना कोई गुस्सा कर भी रहा है, मैंने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, अंदर में भी शीतलता है। ये नहीं मैंने दबा करके अपने आप को शांत तो रखा, लेकिन अंदर में विचारों का प्रवाह एकदम भाग रहे। अगर ना सुना देती तो अच्छा रहता, ऐसा थॉट आ रहा है, यानी शीतलता नहीं है। अब अगर कर्म के क्षेत्र में पॉजिटिव थॉट का प्रभाव दिखने लग जाए, तो आपका मेडिटेशन बहुत प्रभावशाली होने लग जाएगा। कर्म का प्रभाव, बोल का प्रभाव, संकल्पों का प्रभाव ध्यान में, और ध्यान का प्रभाव कर्म में, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैंने भगवान को अपना साजन बना लिया, बच्चा बना लिया बहुत गहरे सम, क्योंकि वो मेरा ध्यान रखता है ना। साजन क्या करता है? सजनी का ध्यान रखता है ना, तो वो मेरा ध्यान रख रहा है। वो मेरे पिता भी हैं, माँ भी हैं, गुरु भी हैं, है ना, साजन भी हैं, सब कुछ है। तो जोड़ा संबंध, तो स्नेह की अनुभूति हुई और प्राप्तियां होने लग गई। तो ये विधि सीख जाइए कि कोई न कोई एक गहरा संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना है। आपकी जो इच्छा आपकी, कहीं धोखा मिला हो, कभी कभी किसी किसी को पेरेंट से भी धोखा मिलता है, प्रेमी से मिलता है, प्रेमिका से मिलता है, आजकल डिवोर्स केसेस बहुत हो रहे हैं, पत्नी से मिलता है, पति से मिलता है, हमेशा ये नहीं कि पत्नी राइट है, हमेशा ये नहीं कि पति राइट है, कभी कभी ना आजकल थोड़ा एक लाइन कहना चाहूंगी, आजकल मेडिटेशन सेंटर पर आ रहे हैं ना तो भाई लोग ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आजकल ये बहनें भी बहुत पढ़ी लिखी हो गई और अपने पैर पे खड़ी हो गई, कहीं एडजस्टमेंट नहीं है। पहले कहते थे कि भाई घर का युद्ध क्षेत्र तुम संभालो, बाहर का युद्ध क्षेत्र हम संभालते हैं, लेकिन आजकल दोनों बाहर निकल गए। तो डिवोर्स के लिए एक ही पक्ष जिम्मेवार है ऐसा नहीं है, कभी कभी ससुराल का पक्ष भी बहुत सहन करता है और कभी कभी मैके के पक्ष को भी बहुत सहन करना पड़ता है, लड़की को भी करना पड़ता है तो सारी आत्मा की बात। कभी कभी रो रहे हैं भाई लोग आकर के भी कि दीदी जैसे है ना महिला थाना होता है ना, ऐसे पुरुष थाना होता जहां पर हम लोग जाकर के अपनी बात को खुले दिल से कह पाते। बचपन से भाइयों को क्या सिखा दिया जाता कि अगर वो रोते हुए आते हैं ना घर में, किसी ने मार दिया तो क्या कहेंगे, लड़कियों क्या जो रोते हो, अब बेचारे रो भी नहीं पाते, ये भी हो रहा है, बहनें तो रो देती है, हल्की भी हो जाती है, लेकिन भाई रो नहीं पाते। तुरंत बचपन से ये डाला गया कि लड़की हो जो रोते हो, तुम भी लगा देते एक, ये कह दिया गया। तो कभी कभी वो भी बहुत सहन कर रहे हैं। तो ये अनुभव होता है पॉजिटिव थॉट और मेडिटेशन, जिससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, तो स्वयं को किसी भी परिस्थिति में संभालने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है। तो जोड़ेंगे गहरा संबंध परमात्मा के साथ, कोई भी संबंध, अब उस संबंध के आधार पर स्नेह की अनुभूति होगी। चारों बात आ रही है, परिचय मिल गया, संबंध जुड़ रहा है तो स्नेह की अनुभूति होगी, और फिर जो परमात्मा की प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, मेरी। अब जब वो प्रॉपर्टी मेरी हो गई तो उसको कोई छीन नहीं सकता, ईश्वर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। तो दुनिया में कई विधियां हैं मेडिटेशन की, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि दीदी कौन सी विधि को अपनाएं, कोई भी विधि गलत नहीं है, क्योंकि अभी शॉर्ट में जिन विधियों की मैं बात करूंगी तो उन विधियों के माध्यम से मैंने ध्यान किया हुआ है, लेकिन एक बात कहूंगी कि कब तक आप नर्सरी में बैठे रहेंगे, नर्सरी से केजी वन में, केजी वन से केजी टू में, कि हमेशा अनारकाई लिखना सीखते रहेंगे। ट्वेल्थ में भी अनारका है लेकिन स्वरूप बदल गया है ना, लेकिन उसमें अ लिखना पड़ता है, ए फॉर एप्पल भी लिखना पड़ता है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रहा है अब तो। अब नर्सरी से धीरे 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 आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर कुछ विधियां बताऊं, मैं किसी भी विधि को गलत न कहते हुए आपको इसी तरफ ला रही हूं, पॉजिटिव थॉट की तरफ, क्योंकि मैंने हर विधि से ध्यान किया। एक होती है मंत्र के माध्यम से ध्यान विधि, दूसरा प्रार्थना के माध्यम से ध्यान, तीसरा त्राटक, किसी मतलब अंधेरे कमरे में दीपक के लौ के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, उसको त्राटक कहा जाता। तो त्राटक के माध्यम से कभी कभी ऐसा भी हम करते हैं कि विचारों का दमन कर लो और विचारों को शून्य अवस्था की ओर ले जाओ, जिसको समाधि की अवस्था कहा गया, या कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया कहा गया, कि मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्त्रार, ये चक्र जागृत होना शुरू होते हैं, ऐसा भी कहते हैं, है ना। और विचारों का दमन करना, श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से ध्यान, अलग 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 विधियां हैं। अब किसी ने मंत्र दिया, हमारे गुरु ने 3 वर्ष की उम्र में ही गुरु मंत्र प्राप्त हो गया था। माँ जहां जाएगी वहां बच्चा जाएगा। अब माला जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मंत्र याद हो गया और हमारा रटिफिकेशन भी चलता, ओम नमः शिवाय। गुरु ने कहा 5 बार माला जपना, जप ली, लेकिन एक संस्कार तो बैठे और यही संस्कार ब्रह्मा कुमारीज में मुझे काम आ रहे हैं कि ध्यान रोज सुबह करना है, पॉजिटिव थॉट की क्लास करनी है। तो मंत्र माना क्या? मन को त्राण देने वाला शब्द, मन को शक्ति देने वाला शब्द। तो मंत्र के माध्यम से ध्यान, प्रार्थना हमने कोई रट डाली, बचपन से जो हमारे दादा दादी ने, पेरेंट्स ने सिखाया वो प्रार्थना, हम गए ऑफिस निकलना है, स्कूल के लिए निकलना है, प्रार्थना रट डाली, अगरबत्ती जलाई, प्रार्थना बोली और निकल गए। तो प्रार्थना मीन्स वन वे कम्युनिकेशन और मेडिटेशन मीन्स टू वे कम्युनिकेशन। अंतर समझिए थोड़ा। प्रार्थना में मैंने ही बोला लेकिन भगवान ने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेडिटेशन में, ध्यान में वो आवाज भी आती है, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। साइलेंट मीटिंग है ये। आप कहेंगे साइलेंट मीटिंग कैसे होती है? मीटिंग के लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना भाई। लेकिन एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए टीनेज की बात है, हम निकल रहे हैं रास्ते से, कोई हमें गंदी दृष्टि से देखता है तो हम अपनी फ्रेंड को कहते हैं कि ना उस व्यक्ति की नजर मेरे लिए ठीक नहीं थी। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि क्यों, उसने कुछ तुमको बोला क्या, कुछ छेड़ा क्या, कुछ ऐसे शब्द कहे क्या? मैंने कहा नहीं बोला कुछ नहीं, लेकिन मुझे उसके वाइब्रेशन टच हुए, उसकी दृष्टि से मुझे एहसास हुआ। अब यहां भी तो साइलेंट मीटिंग है। या हमको किसी से बहुत प्यार का एहसास होता है, वो अपना सा लगता है, या वो गीत भी बना है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, वो भी तो साइलेंट मीटिंग है। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ भी साइलेंट मीटिंग होती है। मेडिटेशन में बैठे ना, आत्म स्वरूप का अनुभव करते हुए, परमात्मा के साथ कोई संबंध जोड़ते हुए, तो ऐसा लगता है कि परमात्मा की आवाज सुनाई दे रही, और परमात्मा क्या कह रहे हैं ये भी महसूस होता है। आप दादियों से, दीदियों से उनके अनुभव सुनिएगा कि मुझे ऐसा लगा कि आज ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत बेले भगवान ने मुझे टच किया, और जब मैंने वो किया तो मुझे सफलता मिली। तो ये भी साइलेंट मीटिंग होती है। तो इसमें एक प्रकार से प्रार्थना ही तो हो गई ना। तो ना तो विचारों का दमन करो। त्राटक एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। एक सिंपल बात, जैसे आपकी लॉटरी निकली 2 लाख की या 5 लाख की या 10 लाख की, आपको कहा जाए इसको गिनना शुरू करो, ये पैसे अब आपके हैं। आप गिनना शुरू करते हैं, ये भी तो ध्यान है, ध्यान ही है ये। अब वहां से कोई व्यक्ति निकल भी जाएगा ना, या कुछ बोलने का कोई प्रयास करेगा, क्योंकि 500 का नोट भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सिंपल रीति से आप मेडिटेशन को समझिए, यही ध्यान है, यही ध्यान है। अब वो प्राप्ति हो रही है ना, मुझे 10 लाख मिले हैं ना, या सैलरी मिली है ना, वो प्राप्ति है ना मुझे, कभी मेहनत के आधार पर ही है, लेकिन लॉटरी निकली माना खुशी है, और उधर आप मेहनत कर रहे हैं तो भी सैलरी तो मिल रही है, उसमें भी 500 की भी गड़बड़ी, 100 की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यही ध्यान की विधि है, त्राटक। यानी जैसे हम श्रेष्ठ विचारों में अपने आप को केंद्रित करते हैं, तो अपने आप अध खुले नेत्रों के माध्यम से उन विचारों में हम खो जाते हैं। किसी को हम याद करते ना, कभी कभी कोई सामने से गुजर जाता है, पता नहीं चलता, माँ बच्ची को बोल के जाती, बेटा मैं 7 बजे तक आ जाऊंगे। 7:05 हो गए, बच्चा बार बार घड़ी देखेगा। माँ का फोटो लेके माँ को याद नहीं करता, माँ की छवि सामने है। यही ध्यान है कि हम वो परम शक्ति परमात्मा में अपने मन को केंद्रित कर लेते हैं, त्राटक भी हो जाता है, विचारों का दमन भी नहीं है। आप दबाएंगे ना विचारों को बहुत ज्यादा, तो फिर वो आवेग के साथ निकलेंगे। तो जब हम ध्यान में बैठे और अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो हम नेगेटिव थॉट्स को प्यार से कहें, रोज तो आपके साथ ही बातचीत होती है ना, थोड़ा सा मुझे अभी पॉजिटिव थॉट की गहराई में जाने दो, प्यार से हैंडल करें, नहीं तो वो नेगेटिव थॉट और हावी होंगे। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को दबाया, छोड़ दिया तो और भी तेज गति के साथ उछलेगा, है ना। बांध बनाते हैं, खोलते हैं, फिर तब पानी आवेग के साथ बहता है। तो ऐसी आपने अगर नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज्यादा रोकने की केवल कोशिश की, तो और फुल फोर्स में वो निकलते हैं। तरीका ये हो सकता है श्रेष्ठ कि विचारों को सुमन बनाइए, पॉजिटिव थॉट के आधार पर नेगेटिविटी को समाप्त कीजिए। इसीलिए ब्रह्म कुमारीज में रेगुलर 1937 से लेके आज तक 2026 तक पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास रोज होती है। आप लोग यहां बैठे हैं, ऊपर पॉजिटिव थॉट की क्लास चल रही है। तो रोज, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में मुरली कहते हैं, ये आप लोग अपने सेवा केंद्र में, अपने शहर में पहुंचेंगे तो वहां जाके अगर एडवांस कोर्स करेंगे तो पता चलेगा। तो जैसे कुछ गलती भी होती है तो पॉजिटिव थॉट के आधार पर हमको लगता है, नहीं आज थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, मैंने गुस्सा किया या किसी को दुख दिया या किसी को अपशब्द कहे, तो रियलाइज होता है और रियलाइजेशन के आधार पर हम अपने आप को चेंज करते हैं। तो चेक करें और चेंज करें। तो विचारों का दमन भी नहीं कीजिए, विचारों को सुमन बनाइए। तो अपने आप ये सारी विधियां शामिल होते हुए हम पॉजिटिव थॉट के माध्यम से जो मन को शक्ति दे रहे हैं, विचार यानी मंत्र, त्राण देने वाले शब्द, उसके आधार पर ध्यान करने की कला को सीख लेते हैं। और जब हम ध्यान की विधि को सीख लेते हैं तो हम 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। तो सबसे पहली विधि आपको बताई कि कॉन्टेम्पलेशन वाली स्थिति हमारी आती है। आपने अभी तक कई बातें सुनी होंगी, तो अभी यहाँ दीदियां आपको 3-4 दिन से मॉर्निंग की क्लास में जो बातें सुनाएंगी, अच्छी तो लगेंगी वो बातें, लेकिन लगेगा अभी तक तो हमने ये सुना था और इसमें और उसमें क्या अंतर है। या कई बार होता है कि जैसे अभी मैं लास्ट में आपको ध्यान कराऊंगी तो आपको लगेगा, अरे मेरी 10 बजे की ट्रेन है ना, 11 बजे की ट्रेन है, बस पकड़ना है, या जो भी बात है, भूख लग रही है तो नाश्ता करना है, ये भी याद आ सकता है। तो कभी कभी विचारों का, ये तो पॉजिटिव या नेसेसरी थॉट होते हैं, लेकिन कभी कभी विचारों का विष भी निकलता है। हम बैठे तो हैं ध्यान में, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, आते आते कुछ झगड़ा हो गया किसी से, तो मेरे को तो यहाँ आना था क्लास में, मैं कह नहीं पाया, तो अच्छा ये हो जाएगा ना मेडिटेशन का सेशन, उसके बाद उसको तो मैं जाके सुनाऊंगी। तो ये विचारों का विष निकलता है। कभी जैसे सागर मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, विष निकला, है ना। और जब विष निकला तो देवताएं क्या होने लगे, बेहोश। लास्ट में क्या निकला, अमृत। फिर वो अमृत किसको पिलाया गया, देवताओं को। तो कहते हैं देवताएं उसको पी के क्या हो गए, अमर। तो ध्यान में भी विचारों का विष निकलेगा, विचार सागर मंथन, यानी ये स्थिति आएगी कॉन्टेम्पलेशन वाली। तो विष निकले तो चिंता मत करना, शिव बाबा को याद कर लेना, शिव बाबा वो विष क्या करेंगे, पी लेंगे। ठीक, फिर दूसरी स्टेज आएगी कम्युनिकेशन के, यानी बातचीत के, प्रेम भरा वार्तालाप। फिर धीरे धीरे उस वार्तालाप में हमारी तीसरी स्थिति बनेगी कॉन्सेंट्रेशन की, मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। और जब एकाग्र हो जाएंगे तो चौथी स्थिति आएगी रियलाइजेशन की। तो कॉन्टेम्पलेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन, फिर रियलाइजेशन, और हम सागर की गहराई में चले जाएंगे। तो समुद्र बाहर बहुत चंचल दिखाई दे रहा है, लहरें हैं, ऐसी नेगेटिव या वेस्ट थॉट चंचल लहरें हैं। और जैसी सागर की गहराई में गए तो रियलाइजेशन, शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति आत्मा ने करनी शुरू कर दे। और ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि 20 मिनट का ध्यान 8 घंटे की थकान को दूर करेगा, 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे कार्य करने की शक्ति को नष्ट कर देगा। अब सोचिए हम लोग कितना गुस्सा करते हैं तो कितनी शक्ति हमारी नष्ट होती है। तो अब समझ में आ गया, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा मेरे परम पिता हैं, उनके साथ याद करने के लिए पॉजिटिव थॉट की विधि सबसे श्रेष्ठ है, इससे विचारों की अमृत धारा बहती है और कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं हम परमात्मा में, मन को एकाग्र करके अनुभूति की गहराई में चले जाते हैं। तो चलिए लास्ट में पुनः हम इसी विधि के आधार पर, और ये मैं कह दे रही हूँ कोई भी विधि गलत नहीं है, आप जो भी कर रहे थे कर रहे हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बस एक बात कहूंगी, नर्सरी से आगे बढ़िए। हमेशा नर्सरी में बैठे रहना ठीक नहीं है, तो अब यात्रा को आगे बढ़ाइए। ओम शांति। चाहे तो आप आंखें बंद करके, चाहे तो आप अध खुले नेत्र, अपने आप ही अध खुले नेत्र हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता और आपको सहज लगता है आंखें बंद करके ध्यान करना। कल का विषय भी कार्मिक अकाउंट का विशेष हम लेंगे, जिससे जीवन के क्वेश्चन मार्क समाप्त होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि प्रश्न चित्त कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। तो जैसा सहज लगे आपको, कंफर्टेबल पोजीशन, और जो थॉट मैं आपको देती जाऊं उन विचारों के आधार पर मन की शांत स्थिति चारों ओर शांति के प्रकंपन, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और इस शांति में अनुभव कीजिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, मुझे अपने जीवन में विचारों की अमृत धार बहानी है, और आज से ही वो बहाव सकारात्मकता की ओर जा रहा है। धन्यवाद शिव बाबा आपका, जो आज इस ज्ञान सरोवर में मेरी डुबकी प्रारंभ हो रही है। शिव बाबा जो ज्योति स्वरूप है, उनसे शांति की किरणें उत्तर उत्तर कर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मुझे जीवन की हर परिस्थिति से अब प्यार हो रहा है, क्योंकि मेरी स्व स्थिति श्रेष्ठ बन रही है और सुख में दुख में परमात्मा मेरे साथ है और दुख का भी धन्यवाद, क्योंकि वो मुझे ईश्वर के करीब ला रहे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे है। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। परमात्मा अब फरियाद खत्म और आपकी निकटता का एहसास हर पल। आप मेरे साथ हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा के वरद हस्त को अपने मस्तक पर अनुभव कीजिए, उस सुगंध को अनुभव कीजिए और उस आवाज को सुनिए कि बच्चे चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मैं हजार भुजाओं के साथ तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ। और जब भी तुम दिल से कहोगे मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, मदद करो, मैं दौड़ा चलाऊंगा। शांति शांति शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।